ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में करें? श्रीमद् भागवतम पांच स्कंद 19वां अध्याय श्लोक नंबर 6।
हरे कृष्णा, तो महाराज संक्षिप्त क्लास देंगे हिंदी में। हिंदी में क्योंकि ऑडियंस हिंदी के ही है, तो महाराज हिंदी में संक्षिप्त छोटा क्लास देंगे, क्योंकि महाराज को जाना है इसलिए जल्दी खत्म करेंगे।
ना वै सा आत्मद्वावतम सुवर्तम शक्ता त्रिलोक्यम भगवान वासुदेव नास्त्री कृतम कश्मलम अश्नुविता ना लक्ष्मणम चापी विहातम अर्हति न वै स आत्मवतम सुवर्तमा शक्ते त्रिलोक्यम भगवान वासुदेव न स्त्रीकृतां कश्मलां अश्नुवीता न लक्ष्मणं चापि विहातुं अर्हति न वै स आत्मवतं सुवर्तमा शक्ता त्रिलोक्यं भगवान् वासुदेव न स्त्रीकृतां कश्मलम् अश्नुमीता न लक्ष्मणं चापि व्यातुम् अर्हति न वै स आत्मवतं सुवर्तमा शक्ता त्रिलोक्यं भगवान् वासुदेव तस्त्रीकृतां कश्मलम् अश्नुवीता न लक्ष्मणं चापि व्याहतं महति।
और कोई Mataji's
और कोई? शब्दात
ना नहीं वही निसंदेह सह वह आत्मा परमात्मा आत्मवताम स्वरूप सिद्धों का श्रीतमा सर्वश्रेष्ठ मित्र सक्त आसक्त त्रिलोक्याम तीनों लोकों के भीतर कोई भी भगवान श्री भगवान वासुदेव सर्वव्यापी भगवान न नहीं स्त्री कृतम अपनी स्त्री के कारण प्राप्त कश्मलम वियोग दुख अश्नुबिता प्राप्त करेंगे ना नहीं लक्ष्मणम रामचंद्र के लघु भ्राता लक्ष्मण च भी अपि निश्चय ही विहातुम प्रत्याग करना अर्हति समर्थ होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान रामचंद्र वासुदेव रूप होने के कारण इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ईश्वर जवान हैं। अतः अपनी पत्नी बिछोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किए होंगे। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का परित्याग करना सर्वथा असंभव था। तात्पर्य भगवान की परिभाषा देते हुए हम यह कह सकते हैं कि छहों ऐश्वर्यों धन जस बल प्रभाव रूप तथा त्याग से युक्त हैं। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव वैकुंठ जगत और वहां के जीवात्माओं से है। भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियमों के अंतर्गत सब कुछ घटता है। फलतः भगवान इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं। सीता देवी का संबंध वैकुंठ जगत से है। इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश रूप है और भगवान रामचंद्र स्वयं वासुदेव हैं। भगवान का लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते हैं। निसंदेह उनका लगाव भक्ति गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, किंतु जो आत्म सिद्ध है उनके समक्ष वे प्रकट होते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। चूंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को यह शिक्षा देने के लिए राजा को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था, अतः उन्होंने माता सीता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। अतः हमें आत्मसिद्ध पुरुषों से भगवान रामचंद्र के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। भगवान रामचंद्र वासुदेव रूप होने के कारण इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ईश्वर जवान हैं। अतः पत्नी बिछोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किए होंगे। उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था।
ॐ ज्ञातिमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलक्या चक्षुर्मिलितनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मयां ददाति स्वावन वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपां सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सुदेवं सद्वैतं सवधूतं सहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोम ताप्ता काञ्चन गौण राधे गिरिमहेश्वरी वाञ्छा कल्पात जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण नामय स आत्मा बतम सुहृतम शक्ति लोकम भगवान वासुदेव नसीकृतम कश्मलम अश्नुवतम लक्ष्मण चापि विहातम अनाति तो इस श्लोक का उच्चारण हनुमान जी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे भागवतम में केवल इन श्लोकों का उच्चारण हनुमान जी कर रहे हैं और आप इस अध्याय में जन्मदीप के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो और जन्मदीप का वर्णन किया जा रहा है और भारतवर्ष भी जो है जन्मदीप में आता है और आप पढ़ते हो इस अध्याय में जो व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लेते हैं वह अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज अगर आप ये इस विषय की चर्चा करो तो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो सोच रहे थे कि अमेरिका में जन्म लेना सौभाग्यशाली है, पर इस अध्याय में आप आगे के श्लोकों में पढ़ोगे कि भारतवर्ष पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है और जो व्यक्ति यहां जन्म ले उसे बचपन से ही राम और कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो जन्मदेव में एक स्थान है किम पुरुषा वर्षा, जन्मदेव के कई भाग हैं और एक भाग है किम पुरुषा वर्षा और किम पुरुषा पुरुषा किम पुरुषा वर्षा में कौन निवास करता है? हनुमान जी। वहां वैसे व्यक्ति निवास करते हैं जो दिखते हैं पशु जैसे पर जिनके दो पैर हैं, जो हनुमान जैसे हैं, जम्बवान जैसे हैं। तो किंग पुरुष वर्षा में इस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और हनुमान जी सदा क्या करते हैं? परम भगवान का गुणगान। तो इस अध्याय के तीसरे से आठवें श्लोकों तक हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनेक गुणों का गुणगान कर रहे हैं। भक्तों की सदा यही इच्छा रहती है क्या कि परम भगवान का गुणगान करें। वैसे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में भागवत में केवल संक्षेप रूप में ही ज्ञान प्राप्त करते हो। भागवतम के नौवें स्कंध में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा क्योंकि दूसरे संतों ने इस विषय की चर्चा कर दी है वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में बड़ी गहराई के साथ भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा 9वें स्कंद में, मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा और इसलिए पूरे भागवतम में केवल 2 अध्याय हैं यहां की भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हो रहा है और इस 5वें स्कंद में संक्षेप रूप में 5 श्लोकों के द्वारा हनुमान भगवान राम के दिव्य स्थिति का गुणगान कर रहे हैं। आप संतों में देखते हो कि अगर किसी संत ने किसी विषय की चर्चा की है तो दूसरा संत उस विषय की चर्चा ज्यादा नहीं करता। कुछ दिन पहले आपने वृंदावन दास ठाकुर का तीर्थभाव तिथि मनाया, 4 तारीख को वृंदावन दास ठाकुर को व्यासदेव जी का अवतार माना जाता है और जिस प्रकार व्यासदेव ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने किसकी लीलाओं का वर्णन किया, चैतन्य। तो अगर आप चैतन्य चरितमृता पढ़ो, चैतन्य भगवत की रचना की थी वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंदा जी की प्रेरणा से। वृंदावन दास ठाकुर भगवान नित्यानंदा के आखिरी शिष्य थे और उनके आदेश पर उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की पर और कृष्णदास कविराज जी के द्वारा हमें चैतन्य चरितमृता प्राप्त होता है। उस आरंभ में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत को चैतन्य मंगल के नाम से प्रकाशित करने की इच्छा थी। फिर उन्हें पता लगा कि चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ बिलमंगल लोचनदास ठाकुर ने किया है तो उन्होंने उसका नाम बदल कर उसे चैतन्य भागवत के नाम पर प्रकाशित किया। तो चैतन्य चरितमृत में आप देखते हो कि अनेक स्थानों में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने इस विषय की चर्चा, इस लीला की चर्चा की है गहराई के साथ, मैं केवल संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत करूंगा। ये है हमारे महान संतों की विनम्रता कि वो दूसरे संतों को आदर देते हैं। तो उसी प्रकार उसी भाव से शुकदेव गोस्वामी ने भी भगवान राम के विषय में संक्षेप रूप में ही 2 अध्यायों में उनका गुणगान किया है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान है। तो भागवतम के 9वें स्कंद में भी आप इस विषय में पढ़ते हो कि भगवान राम प्रकट हुए थे दशरथ के पुत्र के रूप में 3 भाइयों के साथ। भाइयों के नाम क्या थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं ये सब के सब हैं विष्णु तत्व, स्वयं भगवान हैं जो प्रकट हुए रामचंद्र जी के रूप में। जैसे आप भागवतम में पढ़ते हो देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान प्रकट हो, तो भगवान प्रकट हुए कृष्ण भगवान के रूप में। आप पढ़ते हो चैतन्य चतुर्मिता में कि हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य जब उन्होंने समाज की स्थिति देखी तो उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना किया कि आप स्वयं प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और फिर भगवान प्रकट हुए किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो इसी प्रकार आप भागवत में पढ़ते हो कि देवताओं ने भी प्रार्थना की थी, भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर त्रेता युग के आरंभ में और देवताओं ने प्रार्थना की थी और फिर भगवान प्रकट हुए रामचंद्र जी के रूप में। तो हमें किसी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य महाप्रभु साधारण पुरुष हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। और पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान राम क्यों प्रकट हुए, पाई तनाया साधु नाम विनयचित दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभव में योग योगे। भगवान प्रकट हुए किस लिए, धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो हमें किसी हालत में ये नहीं सोचना चाहिए कि परम भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं साधारण पुरुष के समान बन जाते हैं, वो सदा भगवान रहते हैं। तो यहां वो हनुमान जी कह रहे हैं भगवान राम प्रकट हुए, वो स्वयं भगवान हैं। तो भगवान राम उनके भाई हैं, विष्णु तत्व। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि भगवान में छह प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। आजकल आप देखते हो कि भगवान शब्द बहुत सस्ता हो गया है। कई धर्म प्रचारकों के नाम के आगे आप पढ़ते हो भगवान सो एंड सो, पढ़े कि नहीं, हरिद्वार या इन तीर्थ के स्थान में जाओ तो आप देखोगे कईयों के नाम के आगे भगवान शब्द जुड़ा हुआ है। पर पराशर मुनि ने कहा है कि भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें कि छह प्रकार के ऐश्वर्य हों एक साथ, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरसा यशसा ज्ञाना विराग्यावचवसन्न भागा इतिमिना। क्या है ये छह ऐश्वर्य? सबसे धनी, आप द्वारका के विषय में शास्त्र में पढ़ते हो भगवान के 16108 महल थे, वो सारे महल सजे हुए थे हीरे मोतियों सोने के साथ। आप इसकी कल्पना कर सकते हो, आजकल इच्छा तो है सबकी कि सोने से हमारा घर सजे, पर हमें क्या लेना पड़ता है, इमेज गोल्ड पेंट, असली सोने की वजह है सोने के रंग का पेंट लेना पड़ता है। तो भगवान उसे कहते हैं जिसमें कि छह प्रकार के ऐश्वर्य हों एक साथ, और एक पहला है धन, सबसे धनी। फिर यश, किसी कोने में जाओ विश्व के और पूछो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गॉड, लोग बता सकेंगे। फिर बल, आप भगवान की लीलाओं को पढ़ते हो जब देखते हो कि उनकी जो लीलाएं हैं भौतिक दृष्टि से असंभव है। जब भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे बचपन से ही उन्होंने ये बल की लीला भी प्रकट किए थे। छोटे से ही थे जबकि रावण था आया था उनका वध करने के लिए, उससे पहले पुताना भगवान ने भगवान दो बड़े वृक्षों को गिराया। भगवान ने नारद मुनि ने नल कुबेर वनिक्रीव को श्राप दिया था जिसके द्वारा वो दो पेड़ बने, कहां, नंद महाराज के आंगन में। पर साथ में एक वर भी दिया था कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो दामोदर लीला का दूसरा भाग यह है किस प्रकार भगवान ने इन दो वृक्षों द्वारा नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया। तो जब ये दो पेड़ गिरे भगवान को पता था मेरे प्रिय भक्त नारद ने ये वर दिया है कुबेर के पुत्रों को कि 100 देवताओं के सालों के पश्चात उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होगा। हमारी पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। तो भगवान ने नारद मुनि की इच्छा को पूरा किया। भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को अनेक प्रकार के वर दिए थे, और जब भगवान ने देखा कि हिरण्यकश्यप इतना अपराधी बन गया है तो भगवान को प्रकट होना पड़ा नृसिंह ने भगवान के रूप में। थोड़े दिनों में ही आप नृसिंह चतुर्दशी मनाओगे, और नृसिंह देव भगवान के रूप में प्रकट हुए और किसका वध किया, हिरण्यकश्यप। और वध करने के बाद प्रभुपाद जी ने हंसते हुए एक लेक्चर में कहा कि भगवान ने भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भविष्य में ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बड़ा कठिन बना दिया था। तो भगवान को इन्होंने ब्रह्मा जी के सारे वर्णों का पालन करते हुए नरसिंहदेव भगवान के रूप में प्रकट करना पड़ा। तो भगवान के अनेक गुणों में एक है भल। भगवान की, कृष्ण के भी अनेक बाल लीला हैं जिनमें आप देखते हो कि बल प्रकट हुआ था। जब ये दो पेड़ गिरे भगवान के द्वारा, जब भगवान ने दो पेड़ों को नीचे गिराया तो यशोदा माता उस वक्त रसोई में थी। तो यशोदा माता ने जब ये भारी आवाज सुनी तो भागी भागी आई और उन्होंने पूछा ये दो पेड़ कैसे गिरे। और जो दूसरे भगवान के मित्र वहां खेल रहे थे ग्वाले, उन्होंने कहा आपके बेटे ने गिराए इन पेड़ों को। और माता ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है, मेरे छोटे बेटे में इतनी ताकत कहां है दो बड़े पेड़ों को गिराने के लिए। जरूर मेरे पति ने सहयोग दिया होगा या आंधी आई होगी जिसके कारण ये पेड़ गिरे। तो भगवान के अनेक ऐश्वर्य में एक है बल। और भगवान राम ने भी ये लीला प्रकट की जब समय था सीता को पति चुनने के लिए। तो एक बहुत भारी धनुष था शिव जी का, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितने? इतना भारी धनुष। कई राजा आए, धनुष तोड़ने का प्रयास किया, कोई सफल नहीं हुआ। तो भगवान राम जब आए उन्होंने इतनी आसानी से वो धनुष को तोड़ा जैसे एक हाथी आसानी से गन्ने को तोड़ता है। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और भगवान राम ने इस कार्य के द्वारा अपने बल की लीला भी प्रकट की। फिर प्रभाव, आप विश्व के किसी कोने जाओ सबका परिचय है भगवान के साथ। फिर ज्ञान, खूबसूरती। हम सब भौतिक समाज में खूबसूरती के प्रति आकर्षित होते हैं, है कि नहीं? अगर हम सब इतना पैसा खर्चते हैं शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, आजकल आप कोने कोने में जाओ आप देखोगे ब्यूटी सलून। सच बात है, कोने कोने में जाओ आपको ब्यूटी सलून देखेंगे। हाँ, पहले तो ब्यूटी सलून होते थे केवल औरतों के लिए, अब तो यूनिसेक्स हो गया पुरुषों के लिए भी। और हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे हाँ आप तो बड़े खूबसूरत दिख रहे हो तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। और अगर कोई कह दे कि आप बदसूरत दिख रहे हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम सब खूबसूरती के प्रति आकर्षित होते हैं। पर सबसे खूबसूरत कौन व्यक्ति है भौतिक जगत में? मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, अनेक प्रकार के कॉम्पिटिशन होते हैं। पर भगवान के अनेक गुणों में एक गुण है खूबसूरती। तो भगवान के सबसे खूबसूरत कौन सा व्यक्ति है? परम भगवान। भगवान जो है ये सबसे खूबसूरत है। तो अगर आप किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखना चाहते हो तो भगवान का दर्शन लीजिए। आप कहोगे भगवान का दर्शन कैसे लें, भगवान कहां है, भगवान का दर्शन आप कैसे लोगे इस कलयुग में? भगवान इस कलयुग में आचर विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। इस आचर विग्रह और भगवान में अंतर है? कोई अंतर नहीं। अगर हम ये सोचें कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, तो वो लकड़ी की रहेगी। पर अगर हम ये सोचें कि यहां स्वयं भगवान उपस्थित हैं तो यहां भगवान आपको दिखेंगे। तो भगवान इस कलयुग में अपने आप को प्रकट करते हैं अनेक रूपों में। एक रूप है आचर विग्रह के रूप में, और इस आचर विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब भगवान राम का शासन था तो पूरी प्रजा सुखी थी, सब भगवान राम के उपासक थे। और कई ब्राह्मण थे जो भगवान राम के दर्शन लिए बिना कुछ खाते नहीं थे। तो एक ब्राह्मण भगवान राम यात्रा में गए थे एक समय, और 15 दिन के लिए वो अयोध्या में नहीं थे। तो 15 दिन बाद जब अयोध्या में लौटे, लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण 15 दिन से भूखा है क्योंकि इसने आपका दर्शन प्राप्त नहीं किया था। भगवान राम ने अपनी ही मूर्ति, जो कि जब वो प्रकट थे पृथ्वी पर छुपा दिया था उन्होंने, वो मूर्ति दी उस ब्राह्मण को और कहा, इस मूर्ति की उपासना करो, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्र में, जहां आप पढ़ते हो कि ये आर्य विग्रह और भगवान में अंतर है, कोई अंतर नहीं। तो अगर आपको खूबसूरती का दर्शन लेना है तो आओ भगवान के मंदिर में, राधा राज बिहारी मंदिर में, राधा राज बिहारी, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, गौ निताय का दर्शन लो। तो आपको कि रोज दर्शन लेने आना तो कठिन रहेगा, हम तो बहुत दूर रहते हैं, ट्रैफिक है। तो टेक्नोलॉजी की कृपा से आप इंटरनेट वगैरह दर्शन प्राप्त कर सकते हो। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि भौतिकवादी व्यक्ति टेक्नोलॉजी साइंस का को खोजते हैं, उपयोग करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर भक्त इसका उपयोग करते हैं किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। आज आप इंटरनेट के द्वारा इस्कॉन के कई मंदिरों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, एक मिनट राधा राजवाड़ी का प्राप्त कर सकते हो, फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण बालराम का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, फिर राधा माधव का प्राप्त कर सकते हो, फिर रुक्मिणी द्वारका इस लॉस एंजल्स में प्राप्त कर सकते हो। मेरे ख्याल से कम 40 मंदिर हैं जिनके विग्रह का दर्शन आप, हम नहीं 40 से भी ज्यादा होंगे जिनका आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो, किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा। तो अगर आपको खूबसूरती का दर्शन लेना है तो भौतिकवादी व्यक्ति के बजाय असली खूबसूरती कहां है? भगवान के आर्य विग्रह में। प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते थे, एक समय एक राजकुमार था जो आकर्षित हो गया था एक बहुत खूबसूरत स्त्री के प्रति। वो जो लड़की औरत थी उसे पता था ये आकर्षण है मेरे शरीर की तरफ, जो क्या है? मैल है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो राजकुमार ने लड़की से कहा कि मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहता हूं। खूबसूरत लड़की ने कहा, ठीक है, 2 हफ्ते बाद हम मिलेंगे इसी स्थान पर। तो इस लड़की ने सोचा कि मुझे इसे शिक्षा देने दो कि असली खूबसूरती क्या है विश्व में। तो इस औरत ने 2 हफ्ते के लिए जलाद ले लिया, लैक्सिटिव, और 2 हफ्ते के लिए उनका पेट खराब था, जो भी मल वगैरह निकलता था उसे बाल्टी में रखकर एक कमरे में रखा था। तो 2 हफ्ते में बिल्कुल कमजोर, पतली, थोड़ी बदसूरत बन गई थी। तो 2 हफ्ते बाद जिस स्थान में उसने राजकुमार को मिलना था उस स्थान में पहुंची, और राजकुमार वो खूबसूरत लड़की की खोज में था। तो उसने पूछा उस औरत से, उसे लगा कि औरत बुरी औरत है, पूछा, यहां तुमने कोई जवान खूबसूरत लड़की को देखा था? तो उस लड़की ने कहा, वो खूबसूरत लड़की मैं हूं। तो उसने कहा, तुम कैसे? 2 हफ्ते पहले तो तुम इतने खूबसूरत हैं। उसने कहा, 2 हफ्ते पहले तो तुम इतने खूबसूरत थे, अब इतने बदसूरत दिख रहे हो। तो फिर उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी खूबसूरती कहां है। तो उन्हें ले गई बताने के लिए कहां है खूबसूरती। तो प्रभुपाद जी ने इस कथा का नाम दिया था लिक्विड ब्यूटी, और प्रभुपाद जी ने एक लेख लिखा था इस विषय के ऊपर। फिर उस राजकुमार को समझ आया कि ये जो खूबसूरती के प्रति जो आकर्षण है उसका वही भ्रम है। तो औरत ने उसे शिक्षा दी असली खूबसूरती क्या है, आध्यात्मिक क्या है। तो भगवान के अनेक गुणों में एक गुण क्या है, खूबसूरती। फिर भगवान का एक और ऐश्वर्य है जिसे क्या कहते हैं, त्याग। तो अगला ऐश्वर्य है त्याग। तो त्याग भी भगवान में है और भगवान इन ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं अपनी लीला में। भगवान राम के विषय में आप पढ़ते हो कि महाराज दशरथ ने बेटे से निवेदन किया, क्या पिता दशरथ का बड़ा गहरा आकर्षण था राम के प्रति। और अयोध्या जो राजधानी थी भगवान राम की, वो सजी हुई थी, राजा का राज अभिषेक होने वाला था अगले दिन, गलियां सजी हुई थी और पूरे शहर में बड़ा उत्सव था। भगवान महाराज दशरथ की तीन पत्नियां थी, कई स्थानों में आप पढ़ती हो दो, पर प्रभुपाद जी ने दो तीन लेक्चर्स में तीन पत्नियों का वर्णन किया है, जिनमें एक थी कैकेयी। तो एक समय कैकेयी ने अपने पति का सहयोग दिया था, उन्हें कठिन परिस्थिति से बचाया था, जिसके कारण महाराज दशरथ बड़े आभारी हुए। और महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी मांगो मेरे से कुछ वर, जो चाहिए मैं पूरा करने को तैयार हूं। कैकेयी ने कहा, ठीक समय पर मांगूंगी, आज नहीं। तो पूरा अयोध्या में महाराज दशरथ भगवान राम का राज अभिषेक होने की तैयारी हो रही थी, पूरे शहर में उत्सव था, पूरा शहर सजा हुआ था। और उस समय कैकेयी गई अपने पति के पास और कहने लगी, महाराज दशरथ आपको याद है कि आपने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी उसे तुम पूरा करोगे। दशरथ ने कहा, अवश्य ही का कही, मैं कैसे भूल सकता हूं कि मैंने तुम्हें वचन दिया था। तो मैं तुम्हारे से ये इच्छा प्रकट कर रही हूं कि आप राम को वनवास में भेज दो। कितने सालों के लिए? 14 सालों के लिए। इस विषय में प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में कहा कि कैकेयी बड़ी होशियार थी, उसने कहा 14 सालों के लिए, एक साल या दो साल के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि अगर लंबे सफर के लिए, लंबे समय के लिए जाएगा तो जब तक मेरा बेटा भारत इस्टैब्लिश हो जाएगा और कोई उसको हटा नहीं सकेगा। अगर एक या दो साल के लिए भेजा राम को वनवास में तो राम लौट जाएगा, वे भारत को राजगद्दी त्यागनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा 14 सालों के लिए वनवास में भेज दो। जब दशरथ ने यह सुना तो लगभग उनका हृदय हार्ट फेल हो गया था, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि राम उनके अत्यंत प्रिय बेटे थे। तो दशरथ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम 14 सालों के लिए वनवास में जाओ। भगवान राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया पिता के आदेश को। भगवान राम ने यह नहीं कहा, पिता लोग क्या कहेंगे, पूरा समाज ये सोच रहा है कि कल मेरा राजा अभिषेक होने वाला है, मुझे राजगद्दी प्राप्त होने जा रही है। पर भगवान राम ने तुरंत पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया। और भागवत में इस विषय में कहा गया है, जिस प्रकार एक पक्षी बड़े पंखे उगने पर घोंसले से उड़कर खुद ही चले जाता है, पक्षी के पंखे जैसे बढ़ते हैं तो पक्षी को उड़ाना नहीं पड़ता, खुद ही उड़ जाता है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, वो व्यक्ति शरीर त्यागने में हिचकता नहीं है। हमें हम हिचकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पर जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, शास्त्र में कहा जाता है जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ी सरलता से अपने शरीर को त्याग देता है। तो उसी प्रकार इन दो उदाहरण देते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जैसे पक्षी घोंसले से उड़ जाता है या जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति शरीर को त्यागता है, भगवान राम ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान राम ने अयोध्या को त्यागा, पिता के आदेश को पूरा करने के लिए कहां गए, वनवास में गए। उन्होंने ये नहीं कहा पिता ये कैसे संभव है, मैं कैसे अयोध्या छोड़ू वगैरह। तो ये है त्याग की भावना, त्याग का उदाहरण जो भगवान राम ने प्रकट किया। इसी प्रकार से आप कृष्ण लीला में भी देखते हो, भगवान श्री कृष्ण रासलीला में होते थे और फिर तुरंत ही वहां से हट जाते थे। तो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है जिनमें कि छह प्रकार के ऐश्वर्य हों एक साथ। तो परम भगवान जब प्रकट होते हैं वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं जिसकी तुलना ना कोई देवता ना पुरुष कर सका है या कर पाएगा। तो भगवान हनुमान क्या कह रहे हैं, भगवान हनुमान जी कह रहे हैं लेकिन भगवान राम जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, ये नहीं सोचो कि वो साधारण पुरुष हैं। कभी कभी हमारे देश में हमें सुनने को मिलता है कि भगवान राम और कृष्ण प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पर भगवान नहीं है, वो स्वयं भगवान है। एक भारत के नेता ने कहा क्या प्रमाण है कि कृष्ण और राम प्रकट भी हुए थे, तो प्रमाण है शास्त्रों का उपदेश, शास्त्र का उपदेश है उसमें पूरा ज्ञान है। तो परम भगवान जो हैं हनुमान जी कह रहे हैं भौतिक जगत के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हमारे समान बन जाते हैं या उनका किसी प्रकार से भौतिक आकर्षण है, तो ये स्पष्ट कहा जा रहा है। और वो अपने भक्तों के अत्यंत प्रिय मित्र हैं। तो भगवान कहते हैं ये यथम्मा प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण लेता है उतनी मात्रा में ही मैं क्या करता हूं, उनकी सुरक्षा करता हूं। तो भगवान हमारे भक्तों के असली मित्र हैं। और इस विषय में भगवान ने भागवत गीता में अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन तुम तुम्हारे सारे विश्व को एक सूचना दो, क्या थी वो सूचना, कौन थे प्रति जाने ही हमें भक्त से, मेरा जो भक्त है कभी नष्ट नहीं होगा। तो हनुमान जी ये स्थापित कर रहे हैं जो भगवान जो हैं, भगवान राम स्वयं भगवान हैं, उनका किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं और वो हरि के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में। तो परम भगवान अपना विस्तार करते हैं और परम भगवान हरे के हृदय में उपस्थित हैं, किस रूप में, परमात्मा के रूप में। भगवान हमारे हर कार्य के साक्षी भी बनते हैं। कई बार लोग पूछते हैं हम ये गलत कार्य कर रहे हैं पर इसका साक्षी कौन है, तो हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से रजनाते सभी, भगवान हर के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी हैं और जिनमें सबसे प्रसिद्ध साक्षी कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा हमारे हर कार्य के साक्षी बनते हैं और परमात्मा के पास हमारे हर कर्म का हिसाब किताब भी रहता है। आप इंग्लिश में कहते हो ना, मैन प्रपोजल्स गॉड डिस्पोजल्स। व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है और भगवान ये निर्णय करते हैं ये इच्छा पूरी होनी चाहिए या नहीं। असल में ये है, मैन प्रपोजल्स परमात्मा डिस्पोजल्स, कि भगवान हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और परमात्मा देखता है हाँ क्या सुविधा इन्हें देनी चाहिए। आपकी इच्छा होगी आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, जू बीच में मकान चाहिए, तो परमात्मा जी देखते हैं आपका कर्मों का इतिहास क्या है और देखते हैं हाँ मर्सिडीज गाड़ी के बजाय साइकिल है आपके कोठे में और जू बीच में कोठी के बजाय जू बीच की एक झोपड़पट्टी में आपके आकर। तो परमात्मा हमारे हर कार्य का हिसाब किताब रखती है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने भक्तों के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। तो भगवान हनुमान ये क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी इन श्लोकों में भगवान राम के दिव्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं और आगे आज के श्लोक में हनुमान जी ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान राम दुखी थे सीता के कारण, तो वो गलत है। भगवान राम स्वयं सदा भगवान हैं और भगवान राम ने आदरणीय राजा का कार्य किया और हमें उदाहरण दिया कि राजा या नेता का क्या भाव होना चाहिए। आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। इस विषय का वर्णन भागवतम के 9वें स्कंध में आप प्राप्त करते हो और कहा गया है वहां भगवान राम के समय, जब भगवान राम लौटे 14 साल के बाद, उनके भाई भारत ने और अनेक मंत्रियों ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। उनके भाई भारत का इतना गहरा आकर्षण था भाई के प्रति। जब भगवान वनवास में थे तो बिल्कुल बाल सादा भोजन बार्ली जो गाय के मूत्र से बनती थी और पेड़ों के लीव्स पत्तों से अपने शरीर को ढक रहे थे, उन्होंने राज्य किया। और जब भगवान राम लौटे उनका राज्य आरंभ हुआ तो समाज के लोग इतने सुखी थे कि किसी प्रकार का क्लेश नहीं था। अंदाज लगाओ भौतिक संसार में भौतिक जगत में 7 प्रकार के क्लेश हम सबको अनुभव करना पड़ता है ना, जन्म मृत्यु जरा आदि और आदि देवी आदि मदिक आदि। पर भगवान राम के राज्य के समय समाज इतना सुखी था, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं और नो डेथ, मृत्यु भी नहीं। मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आपको ये छूट आज दे दिया जाए कि मृत्यु के समय आप खुद चुन सकते हो, तो कोई चुनेगा मृत्यु को? नहीं, नहीं, सारे शमशान घाट बंद हो जाएंगे क्योंकि कोई चुनेगा ही नहीं मृत्यु के समय। पर भगवान राम के समय, मृत्यु के समय भी आप खुद चुन सकते थे। समाज में लोग इतने सुखी थे। तो आज के वातावरण में भी आप सुनते हो कई बार राम राज्य का गुणगान, राम राज्य की प्रशंसा। पर राम राज्य की प्रशंसा है इसलिए क्योंकि उस समय पूरा समाज, पूरी प्रजा भगवान राम की उपासक थी। पूरी प्रजा के मन में एक ही भाव था, क्या? भगवान राम की सेवा। और राजा को चिंता रहती थी कि हर नागरिक सुखी रहे। भगवान राम अपना वेश बदल कर जाते थे देखने के लिए कि समाज में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, और ये थी उनकी चिंता। भागवत में कहा गया है जैसे एक पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, उसी प्रकार भगवान राम चिंता कर रहे थे पूरी प्रजा के लिए। और इसलिए जो पूरी प्रजा है अत्यंत सुखी थी। तो भगवान राम ने ये उदाहरण दिया कि राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार हमें राज्य का शासन करना चाहिए। आज के नेताओं जैसे नहीं जो केवल यही सोचते हैं कैसे हम लूटें, कैसे हम धनी बने, कैसे हम हमारे रिश्तेदारों को धनी बनाएं इत्यादि। उनके मन में एक ही भाव था, पूरे समाज का की सुरक्षा। तो आज अगर हम समस्याओं का हल करना चाहते हैं तो हमें राम राज्य की आवश्यकता है। तो पर राम राज्य आप कहोगे कैसे संभव हो पाएगा। प्रापदी वेश भगवतम के नवे स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं और भगवतम में कहा गया है, हालांकि राम भगवान राम का राज्य था त्रेता युग में, लोग सुख अनुभव कर रहे थे जैसे कि सतयुग है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्य था पर समाज का सुख था जैसे सतयुग में था। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक के अनुवाद में कि इस कलयुग में भी आप राम राज्य प्राप्त कर सकते हो, आप सतयुग का सुख प्राप्त कर सकते हो, अगर आप क्या करोगे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, अगर हमारे राजनीतिक नेता समाज में ये शिक्षा दें कि हम सबको हरे नाम का उच्चारण करना चाहिए, अगर हम भगवद गीता का अध्ययन करें। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभुपाद जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा जिसमें प्रभुपाद जी ने कहा आप गीता के बड़े प्रचारक हो, गीता का संदेश पाठशाला में देना आरंभ कर देना चाहिए। पर अफसोस है कि उस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। तो आज भी हम राम राज्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं अगर पूरा समाज क्या करे, क्या करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो अगर हमें राम राज्य चाहिए तो हम इस्कॉन भक्तों के द्वारा हमें प्रचार करना चाहिए। हम जब ग्रंथों का वितरण करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि राम राज्य प्राप्त हो। क्योंकि लोग गीता पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, हरि नाम को अपनाएंगे तो अपने जीवन को सुधारेंगे और समझ पाएंगे क्या कि जीवन का क्या लक्षण होना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु जी कहते थे कि अगर समाज में किसी प्रकार की कमी है तो एक ही विषय की कमी है, वो क्या है वो विषय, इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो यहां आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भगवान राम ने हमें उदाहरण दिया कि किस प्रकार राजा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आजकल के जो राजनीतिक नेताओं हैं उन्हें ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में नरकों का वर्णन है, यह वर्णन है कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस विषय में कहा गया है भागवतम के पांचवें स्कंद में कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से नेता बन जाता है, राजनीतिक नेता, और वो उस स्थिति का उपयोग नहीं करता भगवान का संदेश का प्रचार करने के लिए, भगवान की शिक्षा के आधार पर शासन करने के लिए, तो भविष्य में मृत्यु के पश्चात उसे उस नरक में जाना पड़ता है जहां कि उसको पीसा जाता है जैसे कि एक गन्ने को आप पीसते हो, गन्ने को मशीन में निकालते हो रस निकालने के लिए। तो ये भय, ये परिणाम प्राप्त होगा किसे, जो आजकल कलयुग के नेता हैं जो कि बड़े खुश हैं कि हम नेता बन गए पर जो भगवान की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते। तो भगवान राम के समय पूरा समाज सुखी था। और भगवान राम के त्याग का एक और उदाहरण, भगवान राम ने अपने सारे गहनों को, पृथ्वी को बांट दिया था ब्राह्मणों को। सीता देवी जी ने अपने सारे गहने बांट दिए थे पूरी प्रजा को, केवल अपने लिए एक नथनी रखी, बस नोज रिंग, ब्राह्मणों ने ये सब स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, तुमने हमें इतना प्रेम दिया है, हर प्रकार की आवश्यकता को पूरा किया है, और ब्राह्मणों ने इन गहनों को लुटा दिया। किसे किसे लुटाया? राम को और सीता को। तो ये था ब्राह्मणों का त्याग। पहले हमें इसे क्या लिखता है? भगवान राम और सीता का त्याग। भगवान राम और सीता ने सारे गहने बांट दिए। आज आप उम्मीद कर सकते हो आपके राजनीतिक नेता अपनी संपत्ति बांट देंगे। उन्होंने पूरी संपत्ति, अपने गहने सब बांट दिए, और उन ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार करके लुटा दिया। किसे? भगवान राम और सीता को। तो ये था भगवान राम का त्याग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान राम की जो लीलाएं हैं हमें आत्मज्ञानी व्यक्तियों द्वारा सुननी चाहिए। जैसे कि अनेक कथाकार हैं, कथा करते हैं कृष्ण लीला के ऊपर, और सीधा कथा शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं कहां? रासलीला के साथ। तो हमें आत्मज्ञानी प्रमाणिक भक्तों द्वारा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के अप्रकट होने के पश्चात कई सहाजिया जुड़ गए थे जिन्होंने महाप्रभु के असली संदेश को बदल दिया। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति द्वारा अगर आपको शुद्ध संदेश प्राप्त होगा तो आप जीवन को सफल बना सकोगे। तो हमें आत्मज्ञानी व्यक्तियों द्वारा यह संदेश प्राप्त करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी की भगवद्गीता, भगवद्गीता को प्रकाशित किया किस नाम से? भगवद्गीता यथारूप। तो कई बार लोग पूछते हैं यथारूप और दूसरी गीताओं में क्या अंतर है? अंतर यह है, जैसे प्रभुपाद जी भूमिका में समझाते हैं कि उन्होंने उस अनुवाद को प्रकाशित किया है उसी भाव के साथ जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। और आज आप देखते हो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। और आज इन ग्रंथों में, क्योंकि भगवान राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण की शिक्षा यथारूप प्रस्तुत की गई है, हजारों लाखों लोग सारे विश्व में कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें असली संदेश प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें भगवान राम की लीलाओं का ज्ञान आत्मज्ञानी व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहिए, फिर हम भगवान के दिव्य लीलाओं को समझ सकोगे। तो अगर आप भगवान के दिव्य लीलाओं को समझना चाहते हो तो ये आवश्यक है कि आप प्रमाणिक प्रतिनिधियों द्वारा इस संदेश को स्वीकार ग्रहण करो। अगर आपका सौभाग्य होगा कि प्रमाणिक प्रतिनिधियों द्वारा यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो आपको असली संदेश मिलेगा, और उस असली संदेश के आधार पर आप जीवन को सफल बना सकोगे। तो भगवान राम के विषय में कहने के तो बहुत कुछ है, पर आज के श्लोक में हनुमान जी इस श्लोक का उच्चारण हनुमान जी कर रहे हैं, और हनुमान जी भगवान राम का गुणगान करेंगे 8वें श्लोक तक। हनुमान जी ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान हैं, उनका किसी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं, उनका जो देह है बिल्कुल आध्यात्मिक है, और वो हरे के हृदय में उपस्थित हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। और वो हरे अपने भक्तों के प्रिय मित्र हैं। वैसे तो भगवान हरे के मित्र हैं, पर खास करके उनका गहरा आकर्षण है किसके प्रति? उनके भक्तों के प्रति। और अगर हम भगवान को समझना चाहें तो आत्मज्ञानी व्यक्तियों के सहयोग से समझ सकते हैं। और हमें किसी हालत में भगवान राम को साधारण पुरुष के समान तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान राम साधारण पुरुष जैसे बड़े दुखी हो गए थे जब सीता देवी को ने छोड़ा, या अंत में रामायण में आप कथा पढ़ते हो लक्ष्मण को भी त्यागना पड़ा, पर उस लीला का वर्णन भागवत में नहीं है। तो हमें ये सदा याद रखना चाहिए कि भगवान राम हमेशा दिव्यम है और सीता देवी भी दिव्यम है। जब रावण आया था, रावण के 10 सिर थे, और रावण का अर्थ है जो कि हमेशा कष्ट देता है, दूसरों को रुलाता है, तंग करता है। वैसे तो अगर पूछा जाए रावण का परिचय, हम सब कहेंगे वह असुर है, पर रावण हृदय में थे बड़े प्रिय भक्त। यही जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे उन्हें कुमारा ने श्राप दिया था। जो कुमारा थे ब्रह्मा जी के पुत्र, वो प्रयास कर रहे थे भगवान का दर्शन लेने के लिए, छह द्वारों से निकल गए थे। जब वो सातवें द्वार में पहुंचे तो उन्हें रोक दिया जय विजय ने। उन्हें कहा तुम अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, तुम नंगे बच्चे। तो कुमारा ने कहा तुम हमें रोक रहे हो, हमारे प्रिय भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। और जय विजय ने श्राप स्वीकार कर ली। भगवान ने सुना ये वार्तालाप जो हो रहा था जय विजय और कुमारनाथ का, भगवान आगे आए देखने के लिए वार्तालाप क्या हो रहा है, क्या घटना बीत रही है। और फिर कुमारनाथ ने देखा कि भगवान का इतना गहरा स्नेह है जय विजय के साथ, तो वो अपने श्राप वापस लेने लगे थे। उन्हें कहा हमने गलती कर दी जय विजय को श्राप देकर। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी कि तुम ये श्राप दो, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे। तो जय विजय ने कहा हमें जो सजा देनी है दो, पर केवल एक वर चाहिए। वो ये है कि हर जन्म में हम सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करें, हम हर जन्म में आपके साथ ही रहें। तो उन्होंने तीन जन्म स्वीकार किए असुर के रूप में, जिनमें एक था रावण। तो रावण वैसे तो हम जानते हैं असुर था, और जब रावण ने सीता को भी छुआ तो असली सीता को नहीं छू पाया, भौतिक सीता को छू पाया। और रावण जो है हृदय में थे भगवान के भक्त। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं, हमें भगवान की राम लीला, कृष्ण लीला, चैतन्य लीला में रुचि लेनी चाहिए, और रुचि लेंगे तो आध्यात्मिक जीवन को सुधार सकेंगे। मन मन अभाव मद भक्त मद या जी मन नमस्कार महामती सत्यम ते प्रतिजन प्रियोशी में। भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो और मेरी सेवा करो, और अगर तुम ये सब करोगे तो कहां जाओगे, बिना शंका के कहां आओगे, मेरे दिव्य धाम में लौटोगे। भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक नियम हैं, वेदांत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं इन सब लीलाओं नियमों का मूल उद्देश्य है सदा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। तो भागवतम को ध्यान से सुनना चाहिए, कृष्ण लीला को ध्यान से सुनना चाहिए, राम लीला कृष्ण लीला चैतन्य लीला का स्मरण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सब तैयार हो और राम राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई था, हम इधर भी सामने हरे कृष्ण।